सलाम।
सलाम।
सलाम मेरी बच्ची।
सलाम।
ठीक है जनाब इंजीनियर?
जी शुक्रिया।
माफ कीजिए।
आप लोग बैठिए प्लीज।
मैं जनाब एहतेशाम की इजाजत के बगैर यहाँ का डिजाइन बिगाड़ते हुए इन दो इंजीनियरों के पास बैठना चाहती हूँ।
बैठो बैठो।
जी तकल्लुफ ना करें।
बैठिए
बैठिए, तशरीफ रखिए।
सलाम जनाब।
अच्छा तो
ये जनाब मुर्तजा होशमंद, मेरे चचाजाद भाई, मेरी बहन के शौहर और मरियम मैडम के भाई हैं।
जी हाँ, मुझे खुशी हुई। इंगेजमेंट के मौके पर अलबत्ता इंजीनियर होशमंद की होने वाली बीवी के भाई के साथ, ये भी होशमंद हैं लेकिन दिलचस्प हैं।
इजाजत दे।
बता दूं?
क्या कह दोगे?
बता दूं?
नहीं नहीं, इन्होंने तो मजाक किया है, बहुत ही दिलचस्प आदमी है।
अच्छा तो हमारे खुशमिजाज हातिफ साहब का क्या हाल है?
ठीक है ठीक है।
और तुम्हारे अब्बा, उनकी तबीयत तो ठीक है ना?
जी खुदा का शुक्र है कि वो ठीक हैं। जब तक बीमार नहीं पड़ जाते तो पता ही नहीं चलता कि कैसे हैं। दर्द तो है पर वो चीख पुकार नहीं करते हैं।
तुम्हारे अब्बा की तो खैर अलग ही दुनिया है, मुझे वो बेहद पसंद है। अलबत्ता मैं सभी होशमंद फैमिली को पसंद करता हूँ,
खासकर उनमें से एक को।
आपका मतलब हानिया फूफी है ना? ठीक है ना।
अलबत्ता इंजीनियर होशमंद का मर्तबा तो अपनी ही जगह है जो कि खास है।
जी हाँ ये तो है।
अच्छा अगर तुम लोग मेरी मदद करने आओ तो तुम्हारा खैर मकदम है। मैं चाहता हूँ कि आज ही से जाकर मेरे प्रोजेक्ट्स का जायजा लो और देखो कि क्या किया जा सकता है। एक जमीन ज़ाफ़रानिया में खरीदी, मैं चाहता हूँ कि इन्हीं दिनों में जाकर देख लो और उसके लिए जो भी प्रोग्राम बनाया जा सकता है बना लो।
जी
और तुम भी जनाब महमूदी के साथ काम करोगे, अलबत्ता ईद के बाद। ईद से पहले वो अपना अकाउंट वगैरह ठीक कर लेंगे और जो भी काम बचा उसे पूरा कर लेंगे। तुम भी छुट्टियों के बाद आकर अपना काम शुरू कर देना।
मैं पूरी ईमानदारी से तैयार हूँ और आपके भरोसे का शुक्रिया अदा करता हूँ।
देखिए मेरे पास भी सोचने के लिए काफी वक्त पड़ा है तो मैं इसके बारे में आपको बाद में बता दूंगा।
तो फिर पहले शफक प्रोजेक्ट चेक करो क्योंकि वहाँ खुदाई शुरू हो चुकी है। मैं ये चाहता हूँ कि वो जान जाए कि जांच करने वाला कोई खास है। अगर मिस्टर मुर्तजा चाहे तो तुम्हारे साथ जा सकते हैं।
नहीं नहीं नहीं, अगर आप इजाज़त दें। अलबत्ता यूनुस को अच्छी तरह से पता है, ये जानता है कि मैंने ट्रेनिंग कैंप से छुट्टी ली है, मुझे जल्दी वापस जाना होगा।
मैडम प्लीज कह दें कि गाड़ी ड्राइवर समेत तैयार रखें जनाब मुर्तजा को पहुंचाने के लिए।
नहीं नहीं, अगर इजाज़त दी तो मैं खुद ही चला जाऊंगा, इस तरह से मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा।
तुम दोनों आखिर इतना तकल्लुफ क्यों करते हो? गाड़ी इसी काम के लिए तो रखी गई है, ये लोग आखिर तनख्वाह इसी बात की तो लेते हैं।
आपका नहायत शुक्रगुजार हूं, अब डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, चलता हूं।
जाओ सलामत रहो।
इजाज़त दें, खुदा हाफिज। सलाम बोल दें। शुक्रिया।
अच्छा तो
मिलते हैं।
तो मैं चाहता हूँ कि पहले की तरह मेरे प्रोजेक्ट पर जाओ और मुझे एक बार फिर खुश कर दो।
जी आप इत्मीनान रखें।
हाँ हाँ, ये प्रोजेक्ट मेरी अजीज बेटी का है और ये बहुत संजीदा है, उसके लिए तो कोई बहुत ही हाई फाई प्लान तैयार करना होगा।
जी बिल्कुल जरूर। अच्छा अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ।
अब जबकि मरियम मैडम के भाई तुम्हारे साथ नहीं आ रहे हैं तो मैं तुम्हारे साथ चलूँ, कोई एतराज तो नहीं?
अगर आप मुझे इजाजत दें तो पहले की ही तरह इस बार भी अकेला ही जाऊं।
जैसा तुम चाहो करो, बिल्कुल रिलैक्स्ड होकर।
तुमने अपनी चाय नहीं पी?
अब रमजान तो खत्म हो चुका है, कम से कम केक का एक टुकड़ा तो खा लो।
तकलीफ ना करें, बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो। अच्छा तो जाने की इजाजत देंगे? मैं चलता हूँ।
जाओ,
मैं हर वक्त हाजिर रहूंगा। खुदा
खुदा हाफिज डैड।
खुदा हाफिज बेटी। पहले शफक प्रोजेक्ट देख लेना।
जी जरूर।
इत्तेफाक से वो भी यहां पीने ही आया है। खुदा का शुक्र है कि मेरा बेटा सिगरेट तक नहीं पीता।
तुम्हारा ये तंज मुझे याद रहेगा आतिफ। रात बड़ी है और कलंदर है बेदार।
अरे भाई, हमें पता होना चाहिए या नहीं कि इस बोट में कैसा माल है, कहीं उसमें ड्रग्स वगैरह हुई तो?
क्या तुम बच्चे हो गए? क्या ये पहली मर्तबा है? भले आदमी ड्रग्स का सामान कोई बोट के जरिए लाता है? अगर किसी को नहीं भी मालूम होगा तो समझ जाएगा कि जनाब कस्टम में नए नए भर्ती हुए। भाई ड्रग्स को ग्राम या फिर बहुत ज्यादा हुआ तो किलो के वजन में लाते हैं, और वो भी बोट के जरिए नहीं, सैकड़ों छोटी मोटी जगह होती हैं और ऐसा छुपाते हैं कि कोई समझ ना पाए। ये बात कोई बेवकूफ भी समझता है कि ड्रग्स को बोट के जरिए नहीं लाते। हाँ, अगर कपड़ों के थान या क्या पता बंद डब्बे या सेब का जूस या कोई और तरह का जूस वगैरह, क्या पता है। अरे भाई हमसे क्या मतलब कि क्या है क्या नहीं? हाँ मखा, अरे क्या लेना देना हम लोग?
परेशानी क्या है आप बताइए तो हम दूर कर देंगे।
सुनो, मजाक है तब भी सही नहीं, ड्रग्स का नाम तो लो ही मत मेरे सामने।
आखिर ऐसा हो क्या गया जिसका डर डर रहे हो?
डर नहीं रहा हूँ जनाब, लेकिन गुर्जी कमीना रिलीज करने में रोड़े अटकाएगा।
गुर्जी की औकात ही क्या?
अरे भाई अभी एक आध हफ्ता ही हुआ है उसे आए।
वो दाढ़ी वाला?
ये लोग जो शुरू में आते हैं रास्ते पर नहीं आते, तुम्हें अपना वक्त याद नहीं है?
खुद इसको बताओ, शुरू शुरू में कैसे कैसे पोज मारते हैं और बाद में कैसे पैसे गिनते हैं। अच्छा ये तो बताओ कि ये जो आदमी है, ये
जनाब
गुर्जी, ये गुर्जी आखिर किस कब्रिस्तान में था जो यहाँ भेज दिया?
आपके इंचार्ज होने से पहले यहाँ था, 3 साल तक महाजे जंग पर था और अब वापस आ गया।
ये सब छोड़ो, जाने दो, ये बताओ कितने में बिकेगा?
बिकने की बात करते हो, इनकी कीमत जन्नत है। ऐसे लोग जन्नत की चाबी चाहते हैं चाबी, और जन्नत हमारे तुम्हारे हाथ में तो है नहीं। अगर इनसे थोड़ी ज्यादा बात करो तो इनके इनकलाबी रख फूल कर इतनी बड़ी हो जाती।
आखिर ये तुम किस तरह की बात कर रहे आते हो? यहाँ का सबसे बड़ा आदमी कस्टम का ऑफिसर है और तुम्हारा भी ये फर्ज है कि पेपर पर साइन करके सामान बाहर निकालो। मैं भी तुम्हारा बॉस हूँ और पहाड़ की तरह तुम्हारी पीठ पर हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम क्या चाहते हो कि 30 साल एक ही कोने में पड़े पड़े तुम वहाँ पर सड़ते रहो, ताकि 30 बरस के बाद जब रिटायर हो जाओ और घर के कोने में जाकर के बैठ जाओ और दरवाजे पर राह तकते रहो कि हर महीने की आखिरी तारीख को कुछ पैसे पेंशन के नाम पर तुम्हारे पास पहुँच जाए?
बॉस कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ज्यादा हिस्सा चाहता हो?
जी नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं है।
मेरे दोस्त इस माल को छोड़ो और छुट्टी करो, और 2-3 खरी बातें इस आदमी को, क्या नाम है इसका,
गुर्जी,
गुर्जी हाँ, और 2-3 खरी बातें इस आदमी को सुनाओ कि दिमाग इसका ठिकाने आए। मेरी समझ में नहीं था ये गुर्जी है कौन।
भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है, जब वो बात करता है तो बिल्कुल पहाड़ की तरह डर लगता है।
पहाड़ ये है, पहाड़ ये नासिर है। नासिर, क्या तुम इन चंद बरसों में कभी किसी से डरे हो?
नहीं जनाब।
अरे भले आदमी, आखिर डर किस बात का है?
तुम तेहरान में घर और गाड़ी के मालिक बन गए, लेकिन हमने और नासिर ने अभी कुछ बरसों से ही सर उठाना शुरू किया है।
वादा खिलाफी ना करो, हमें भी कुछ पैसे कमा लेने दो, इस कदर कंजूसी मत करो।
अरे भाई मैं कंजूस नहीं हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि हम सबको कमाई हासिल हो, लेकिन मैं जब घर जाता हूँ तो मेरी हालत बिगड़ने लगती है।
परेशान ना हो, 1-2 हफ्ते में हम लोग तेहरान चले जाएंगे।
कोई बात है क्या?
भाई मैं तो अपनी फैमिली यहाँ पे ला नहीं सकता हूँ, मैंने जाकर के बात कर ली है, तेहरान के लिए ट्रांसफर करा लिया है, इन दोनों ने भी कहा कि मेरे साथ ही आएंगे।
तो मैं भी आऊंगा।
तो अगर तुम भी आना चाहते हो तो चलो काम को जल्दी से जल्दी पूरा करो, अगर आना चाहते हो तो चलो साइन कर दो। इन बिचारों के भी बीवी बच्चे हैं, इनके बीवी बच्चों के खातिर इन हालात में इतने बड़े सौदे को हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। मेरी बात को समझते क्यों नहीं आते?
अच्छा रहेगा अगर उसे सर्दी जुकाम हो जाए और वो छुट्टी पर चला जाए।
हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो, सिर्फ जुकाम होना चाहिए, बस बस इतना ही।
ठीक है बॉस।
सलाम।
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 सलाम। इंजीनियर होशमंद आ गए।
उन्हें अंदर आने को कहो।
जी जनाब।
सलाम जनाब।
वालेकुम अस्सलाम इंजीनियर। आ जाओ।
शुक्रिया। कैसे हैं आप?
क्या रिपोर्ट है?
अर्ज करूं कि मैंने विजिट किया है, वहां सब कुछ अच्छा चल रहा है।
गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हमारा कोई एक काम तो ठीक चल रहा है।
शुक्रिया। ये उस लिस्ट की कॉपी है जिसके बारे में आपने कहा था कि इसकी करेक्शन की जाए। मेरे ख्याल से सब ठीक है, अलबत्ता आपकी राय जरूरी है।
ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, शाबाश शाबाश। मैं यूं ही किसी पर उंगली नहीं रखता हूं, मैं जानता हूं कि तुम में इस काम की सलाहियत है, शाबाश।
सलाम डैड।
सलाम बेटी।
सलाम।
सलाम। आओ,
कैसी हो? ठीक हो?
तुम ठीक हो?
ये हमारे इंजीनियर साहब भी तुम्हारी खिदमत में हैं, जहां भी जाना उनके साथ जा सकती हो।
हम साइट पर चलें?
हाँ, मैं आपकी खिदमत में हूँ जब आप चलना चाहें।
अभी ये वही वक्त है जब मैं फरमाऊं, यानी कहूं।
जो आप कहें।
खुदा हाफिज डैड।
कामयाब लौटना।
मुझे भी जा सकते
हैं। ये रहने दो, मैं एक नजर देख।
शुक्रिया।
बाय बाय।
खुदा हाफिज। चलिए।
तुमसे एक दरखास्त कर सकती हूँ?
आप हुक्म करें।
मेरे सैंडल्स गाड़ी की पिछली सीट पर रखे हैं। क्या तुम उसे ला सकते हो? माफ करना।
कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है। यही है?
हाँ।
ये लीजिए।
ये लो, ये रही जमीन।
ये तो बहुत अच्छी है। अच्छा, ये जगह आपके नाम है या आपके डैड के नाम है?
मैंने तुम्हें बताया या नहीं?
क्या चीज?
कि मेरी मिल्कियत मेरी है और मेरे डैड की मिल्कियत मेरी और खुद उनकी है।
अच्छा तो ऐसा है, तो मुझे क्या करना होगा?
क्या क्या करूं?
नहीं, मेरा मतलब ये है कि आप यहाँ क्या बनाना चाहते हैं, तेजारती या रिहायशी?
तुम क्या कहते हो?
तेजारती रिहायशी दोनों। बस आप ये बताएं कि दोनों तरफ पीछे छोड़ने के लिए जगह है या नहीं।
नहीं है।
जगह तो बड़ी अच्छी है, साइज भी बड़ा अच्छा है।
तो फिर खेंचो, देखे क्या होता है।
खेंचो?
नक्शा खेचो बच्चे। मेरा दिल ये चाहता है कि यहाँ के लिए ऐसा नक्शा बनाओ कि सब हैरान हो जाएं।
मैं अकेले ही यहाँ का नक्शा तैयार करूँ, यानी मैं यहाँ का अकेला ही इतनी बड़ी जगह का इंजीनियर रहूंगा?
तो फिर क्या, कई नक्शे और डिजाइन तैयार करो और जो पसंद आएगा उस पर काम करेंगे। ईद के बाद से खुदाई का काम शुरू कर देंगे। आओ चलें।
रहने दे, मैं उठाता हूँ। रहने दीजिए, मैं उठा लेता हूँ। आप चलिए।
प्राइमरी नक्शे का काम कितने दिनों में हो जाएगा?
काम पर मुनहसिर है।
पूरे इन्हेसार के साथ बताओ।
अच्छा, सबसे पहले तो ये देखना है कि किस तामीराती फन का इस्तेमाल करना है और ये कि वहाँ पर कितने फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है।
जो भी अच्छा हो और जितना ज्यादा हो उतना ही अच्छा है।
इस तरह तो नहीं बता सकता हूँ, मुझे थोड़ा हिसाब लगाना पड़ेगा। पहली मनसूबाबंदी और दरअसल उसी इब्तिदाई फिक्री कामों में थोड़ा वक्त लगेगा।
वक्त है, हिसाब करो। कंपनी चलोगे या अपनी अजीज दादी के घर जाओगे?
नहीं, ऑफिस में तो कोई काम नहीं है, अजीज दादी के घर जाना होगा। दादी की जब से कब्रिस्तान में हालत बिगड़ी है हम लोगों ने अकेला नहीं छोड़ा उन्हें। मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगा, आप जहां भी कहें मैं उधर जाऊंगा।
कितना तकल्लुफ कर रहे हो, ये तकल्लुफ छोड़ो। ये बताओ कि अभी उनके पास कौन है?
शायद बाहर या मरियम, अलबत्ता मेरे ख्याल में बाहर ही होगी क्योंकि मरियम तो स्टडी में बिजी है।
तो तुम वहाँ इसलिए जा रहे हो कि शायद तुम्हारी मंगेतर भी तुम्हें वहाँ मिल जाए। ओ मेरे खुदा, क्या आज भी ऐसे लड़के पाए जाते हैं जो कि अपनी मंगेतर का नाम सुनते ही शर्म से सिर झुका ले। तो तुम लोगों की शादी कब है?
अभी तो पता नहीं, शायद मरियम के इंटर्न एग्जाम्स के बाद।
और तुम्हारे बहन की?
बहार और मुर्तजा शादी की रस्म नहीं करेंगे, वो ज़ियारत के लिए जाएंगे।
बड़ी दिलचस्प बात है।
बहरहाल उनकी अपनी सोच है, अलबत्ता मरियम ये चाहती थी कि हम भी ऐसा ही करें, लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ।
मरियम तुमसे कितने बरस छोटी है?
2 साल 6 महीने 2 हफ्ता और 2 दिन।
जरा और पक्का बोलते, सेकंड्स तो बताए नहीं। मरियम की स्टडीज कब पूरी होंगी?
मेडिकल कोर्स कहाँ खत्म होता है? वो भी तो स्टडी की दीवानी है।
आखिर उसकी दीवानगी स्टडीज है या तुम हो?
ओ, माफ कीजिए। सलाम अंकल। सलाम मरियम, कैसी हो तुम? हाँ हाँ, आज मैं दादी के घर पर ही हूं। नहीं कोई बात नहीं, आपका खैर मकदम है, आप तशरीफ लाएं, हम मिलते हैं। खुदा हाफिज। माफ कीजिएगा।
क्या फोन पर मरियम मैडम थी?
जी हाँ।
फोन पर गपशप और मंगेतर के साथ प्यार मोहब्बत ना?
नहीं नहीं, मरियम और उसके घर वाले बिल्कुल इस तरह के नहीं है। वो अपने डैड के साथ थी जो बात कर रही थी।
फिर किस तरह के हैं?
यही कि किसी गैर महरम के साथ फोन पर बातचीत।
ये बात मेरी समझ में नहीं आई। मरियम जो कई बरस तुमसे उम्र में छोटी है, लेकिन तुमसे ज्यादा वो यूनिवर्सिटी में रही है।
पढ़ने में बहुत तेज रही है, जंपिंग की और जहीन होने की वजह से 16 बरस में यूनिवर्सिटी पहुंच गई। पढ़ने की बहुत ही अजीब लगन है।
बड़े ताज्जुब की बात है। एग्जिट रोड क्रॉस कर गई।
अच्छा कोई बात नहीं, मैं शर्मिंदा हूँ, माफ करें, मैंने बहुत बातें कर ली, मैं अभी ठीक करता हूँ, आप परेशान ना हो, यहीं साइड में रोक ले, मैं आपको गाइड करता हूँ।
मरियम बेटी, अपने अब्बा को अनार ला कर दो।
अनार की भी बारी आ जाएगी।
अम्मी अम्मी, आप रोटी के टुकड़े क्यों कर रही हैं?
इसलिए कि टुकड़े टुकड़े करके प्लास्टिक में लपेट के फ्रीजर में रख देंगे।
इसे फ्रीजर में रखने के बाद खाएंगे?
हाँ, बाद में निकालेंगे, गर्म करेंगे और खाएंगे।
तुम्हें बहुत तकलीफ दी मैंने।
ये कैसी बात करती हैं अजीज अम्मी, कैसी तकलीफ?
ये यूनुस है।
आपको कैसे पता दादी कि ये यूनुस है?
क्योंकि हमेशा हल्की सी घंटी बजाता है, फिर चाबी से दरवाजा खोल के अंदर आ जाता है।
मैं आ जाऊं? सबको सलाम। सलाम
सलाम सलाम बेटे, जीते रहो।
सलाम।
कैसे हो बेटे?
सलाम अंकल। शर्मिंदा ना करें, बैठिए।
खुदा का शुक्र है कि भले चंगे हो।
जो कोई दादी के पास रहेगा भला चंगा ही रहेगा। आप ठीक हैं दादी?
मैं ठीक हूँ बेटे, तुम कैसे हो?
सलाम यूनुस भैया।
अलैकुम सलाम छोटी खरगोश।
ऐसा कैसे हुआ हम तुमसे पहले पहुँच गए इंजीनियर साहब?
बहरहाल आप डॉक्टर हैं और मैं इंजीनियर, आप अंकल हैं और मुझे अंकल बनने में अभी काफी वक्त लगेगा।
यूनुस साहब, देर में पहुंचने के लिए वाकई में आपका रीजन अच्छा है।
तुम ठीक हो?
शुक्रिया, मैं ठीक हूँ।
मेरी बच्ची, ये फल की ट्रे अपने भाई के सामने पेश करो।
आंटी, आपका खैर मकदम है, आपको देखकर खुशी हुई।
बहुत बहुत शुक्रिया बेटे।
वाह क्या प्यारी बच्ची है। शाबाश।
क्या बात है मेरी छोटी खरगोश।
कितनी प्यारी बेटी है। शाबाश।
आओ जरा मुझे प्यार तो करो।
आओ अपनी बेटी को प्यार कर लूं। ओ मेरी प्यारी सी बच्ची।
उठो एक कप चाय लेकर आओ मेरी बच्ची।
जी अच्छा।
बहन की शादी की खबर तो होगी ना तुम्हें?
अच्छा नहीं, कब और किससे?
एक ऐसे सुनहरे बालों वाले लड़के से जो अकाउंटेंट भी है।
तो आप दूल्हे को नहीं पहचानते या दुल्हन को?
दूल्हा दुल्हन को तो सिर्फ खुदा ही पहचानता है।
अरे बेटी तकलीफ ना करो, मैं खुद ही ले जाऊंगी।
ये कैसी बात है अजीज अम्मी, बस इसे मैं किचन में रख कर आती हूँ।
शुक्रिया बेटी।
कोई बात नहीं अम्मी जान।
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा।
ये तो मेरा फर्ज है, कोई बात नहीं।
बहार की शादी मुर्तुसा से होगी और यूनुस की शादी मरियम से।
सादिया देर तो गुजर गई है और कल अभी तक ना मालूम है। इसके उसके दरमियान आज की मोहलत को ना गवाओ। शुक्रिया बेटी।
ये कैसी बात है अजीज अम्मी।
दादी अपनी दवाई तो खा रही है ना?
मेरी बेटी तुम तो अभी डॉक्टर नहीं बनी हो ना? बन गई हो?
बन गई है अजीज दादी, आपको पता नहीं है सभी कहते हैं डॉक्टर मैडम।
सच कह रही हो?
मेरी बेटी अजीज अम्मी मुझे भी डॉक्टर नहीं मानती हैं। आपको पहले से ही नहीं था, कहती थी कि नुस्खा ही लिखते रहोगे। मैं भी बहुत उदास हो गया था। आपको क्या मंजूर है अजीज अम्मी, क्या मैं आपके लिए कंध तोड़ दूं?
नहीं तुम नहीं तोड़ सकते।
लीजिए अभी आता हूँ।
अंकल के बाद मैं।
अभी तोड़कर दिखाता हूँ आपको। अरे ये छोटा मोटा तो आपने तोड़ लिया है, देखते हैं इसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ। ओह
ना करो ना करो बेटा, ये सब तुमने बेकार कर दिया और खुद को भी खराब कर रहे।
बस हो गया, फिलहाल आज के लिए काफी है, बाकी ये सब बच्चे तोड़ लेंगे, मैं तो चलता हूँ।
अब मेरी बारी है, बाकी लोग अलग हट जाएं और करीब से इंजीनियर होशमंद के काम का नजारा करें।
उस तरफ से उधर से,
इस तरफ से।
कंध की नहीं, कंध शिकन की बात कर रही हूँ। ये देखो मेरा 2 किलो कंध मेरे होशमंद पोतों की वजह से पाउडर बन गया। उठो उठो, अपना हुनर बाद में दिखाना।
मतलब उठ जाऊँ अब?
हाँ जाओ। माशाल्लाह क्या काम किया है इन्होंने।
आजीज दादी दे, अब मैं तोड़ती हूँ।
क्या करूँ इन बच्चों का। तुम्हारे कुर्बान जाऊँ बेटी। तुम लोग जो कि फारसी की शेरनी को छोड़कर दवा और गोलियों की तरफ चले गए हो, तुम कंध तोड़ना क्या जानो?
कंध तोड़ने का इससे क्या रब्त है?
अपने हाथ का ध्यान रखना।
दादी क्या आप वाकई में मेरे और पापा के प्रोफेशन से नाराज हैं या फिर मजाक कर रही हैं?
तुम्हारे पापा का लिटरेचर बहुत अच्छा था, उन्हें बहुत से अशार याद थे। तुम्हारे दादा जान के साथ इसी सहन में बैठकर ये लोग शेर व शायरी करते थे। पता नहीं अचानक क्या हुआ कि मेडिकल, दवा और महाजे जंग की तरफ चला गया। कभी महाजे जंग पर तो कभी यूनिवर्सिटी में होता। लेकिन तुम्हारे साथ खेल कर रही हूँ, दिल पर मत लेना। अरे क्या हुआ
बेटी? अपने हाथ का ख्याल रखो।
अम्मी जान कुछ नहीं हुआ है?
नहीं कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ,
कुछ भी नहीं हुआ अम्मी।
खुदा का शुक्र है।
मैं तो भूल ही रही थी, इस साल ईद की शब तुम सबकी दावत है पिछले बरसों की तरह।
मुझे देखो कि मैं अपने बड़े होने का एहसास कर रहा था और ये कहना चाहता था कि इस साल ईद पर सब हमारे घर आए।
इस घर का मालिक गया है, मैं तो नहीं मरी ना। और जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारे अब्बा के घर का दरवाजा ईद की शब कभी बंद नहीं होगा। बड़ापन इन चीजों से नहीं होता मेरे बेटे। मेरे सभी बच्चे बड़े हैं, सभी अच्छे हैं और जरूरत भी नहीं है कि इस तरह साबित करो।
जो हुक्म, मैं आपका खिदमत गुजार हूँ।
हातिफ को भी फोन करके कह दिया है, हर साल की तरह इस साल भी
इकट्ठे होंगे तुम्हारे अब्बा के बगैर।
अम्मी आप अपनी इन मुबारक आंखों से इस कदर आंसू ना बहाएं। हमारा तो बस ये कहना है कि आप खुद को परेशान ना करें, अजियत में ना डालें। डॉक्टर ने आपको क्या कहा है? अम्मी बस आप आंखों से आंसू ना बहाएं, हम जरूर आएंगे, जरूर आएंगे।
रहने दो बच्चे, तुम भूल गए क्या? जब तुम्हारा दूध छोड़ाया था तो इसी आंगन में इतना रोए चिल्लाए कि पड़ोसियों को आज तक याद है तुम्हारा रोना चिल्लाना।
अब्बा जान,
अब्बा की जान,
अजीज दादी सच कह रही हैं कि आप रो रहे थे?
नहीं मेरी बच्ची, अजीज अम्मी खेल कर रही हैं।
नहीं मैं खेल नहीं कर रही, इतना रोया कि पूछो मत।
उस वक्त अब्बा जान छोटे थे जब रो रहे थे, लेकिन मैं उस वक्त नहीं थी जो देखती, पर अब जब के बड़े हैं देख रही हूँ।
तुम्हारा ख्याल है वो कर सकता है?
वो तो यही कह रहा है कि एक दो महीना लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो ज्यादा ही जल्दबाज है। बड़ी हिम्मत और सलाहियत वाला है, बहुत ज्यादा चाहत भी रखता है, देर से आया और जल्दी जाना भी चाहता है।
बाहर के मुल्क में इस तरह की सलाहियत को जाया नहीं होने देते, इसीलिए अगर मुझ जैसे लोग यहाँ ना हो तो दूसरे लोग जिंदगी के मसाइल में उलझकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
तो फिर परेशानी तो नहीं होगी ना?
कमीना कहीं का।
मेरे डैड किसी को खुद पर हावी नहीं होने देते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया जेबा। कौन है जो कदर जाने? तुम चावल बिल्कुल नहीं खाओगे, समझे?
सिर्फ दो चम्मच। हानिया मैडम दो चम्मच।
बिल्कुल नहीं, सिर्फ चिकन और सलाद।
हमारा डैड किसी की कदर के लिए ये काम नहीं करते, तरक्की और सलाहियतों को निखारना अपना फर्ज समझते हैं।
मजाक उड़ा रहे हो मेरा?
मैं हार गया।
काश हम रात का खाना बाहर से मंगा लेते।
ये भी तो बाहर का ही लगता है, यानी रेडीमेड है, हमने तो पकाया नहीं।
तुम तंज कर रहे हो क्या? तुम चाहते हो कि खाना मैं बनाया करूं? फरीदून, अजीज अम्मी ने ईद की रात के लिए बुलाया है, फोन किया था।
हमने तो पहले से ही कह दिया है कि बिल्कुल हम जरूर आएंगे।
जरा सोचो, 15 साल के बाद हम लोग एक साथ जमा होंगे अब्बा जान के घर पर, बस अब्बा जान साथ नहीं होंगे।
हानिया मॉम, मैं नहीं आ सकती हूँ, आप तो जानती हैं ना।
आओगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा।
हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन वेब कैम पर मामू जान से वादा किया है कि उनके साथ रहूंगी। वादा जो किया है।
ठीक है, लेकिन केवान बेटा हमारे साथ आएगा।
नहीं मैं नहीं आऊंगा।
तुम आओगे। चलो देखो कि लोगों के बच्चे किन हालात में डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे हैं।
क्या सिर्फ लोगों के ही बच्चे?
थोड़ा चिकन खाने की इजाजत तो है ना मुझे?
हाँ ठीक है।
मगर ये कि मेरी बेटी मेरा ख्याल रखे। शुक्रिया मेरी बेटी।
तुम खाओ ना।
मुझे भूख नहीं है।
एक दो चम्मच और मुझे खा लेने दो हानिया।
फरीदून ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम सलाद खाओ।
डैड आप ये सूप पी तो लें, अच्छा है।
पानी में अगर ताकत होती तो मेंढक भी पहलवान हो जाता। सिर्फ थोड़ा सा, देखो मेरा पेट अभी बिल्कुल पिचका हुआ है, ये खाने नहीं देती है।
खाओ ना।
ठीक है मैं सिर्फ दही दूंगा।
अब से इस घर में चावल कभी नहीं पकेगा, समझी?
भाई तुमने कुछ इस तरह की अजीज अम्मी नाराज ना हो समझा दिया होता।
फोन पर क्या कहती मैं? अरे अपना मोजा
यहाँ
मत रखना।
अरे नहीं मैं धोने को ले जा रहा हूँ, कुछ कह के तुमने समझा दिया होता।
तुम भी मेरी जगह होते तो कुछ नहीं बोल पाते। वो बेचारी तुमसे बहुत नाराज थी पर कुछ नहीं बोली। अरे वो पर्दा भी लगा देना।
ठीक है ठीक है ठीक है,
इस तरह से करो।
अरे उनसे कह दिया होता कि ईद की रात है, एजेंसी में बहुत काम है, हम सब मसरूफ हैं।
कहा था मैंने।
हाँ तो क्या कहा?
उन्होंने कहा कि कह दो घर वालों को भी मुसाफिरी समझें। मैंने उनसे कह दिया है कि वो कल आकर आपसे मिलेंगे।
मैं खुद ही कल जाऊंगा और किसी तरह मना करूंगा।
वैसे हादी भाई को भी मना करने में कामयाबी नहीं मिली।
तुम जानती हो मैं किस बात से डरता हूँ?
क्या?
इस बात से कि उस जहरीले और खुशनुमा साहब को भी बुलाया होगा।
न मैंने उनसे कुछ पूछा न उन्होंने कुछ बताया।
ईद की खुशियाँ हमारे घर में आई हैं, जिनका हमें खुशी से इस्तकबाल करना है।
तुमने इस मामूली से मसले को हल किया कि नहीं? जरा मुझे दिखाओ तो, दो घंटे से तुम कर क्या रहे हो?
मुझे तो डरा दिया।
दो घंटे से एक सवाल को हल नहीं कर पाए?
पर्दा यही है ना,
ये आसान है।
हाँ, चलो वही हल करो।
क्या इस खिड़की पे लगा दूं?
हाँ,
कील और हथौड़ी दे देना।
क्या कहा?
कील हथौड़ी।
अरे वही तो है, अगर नहीं मिल रही तो मैं आऊं।
हाँ, देखा देखा,
इतने बरसों में एक काम को कहा वो भी नहीं किया जा रहा है। अरे मेरी बच्ची छोड़ दे, इसे ही अपने आप पढ़ लेगा, तुम जाने तो अपना काम करो।
कुछ नहीं कर रहा है, बस ड्राइंग बनाए जा रहा है।
तो ठीक है, पढ़ तो रहा है ना। वो पिन कहाँ है? सुन रहे हो, सुबह अम्मी ने फोन किया था।
हाँ तो क्या कहा उन्होंने?
कुछ नहीं, खैरियत पूछी, पूछ रही थी ईद की शब बारात आ रहे हैं या नहीं।
तुम्हें पता है ना कि इस साल हमारे यहाँ भी प्रोग्राम है।
ये तो बताओ, हर साल तो प्रोग्राम था नहीं, तब भी हम जाते थे क्या ईद पर? वैसे मैंने उनसे कह दिया कि ईद के बाद शायद आ जाएं।
अच्छा, तुमने वादा तो नहीं किया ना?
नहीं, वादा तो नहीं किया। तुमने इतनी अच्छी सास देखी है, वो बेचारी भी इंतजार कर रही हैं।
अरे भाई, हम भी तो उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, काम है।
तुम्हारी बात सुनकर अच्छा लगा।
सलाम।
वाह, कैसे हो इंजीनियर साहब?
सलाम इंजीनियर साहब।
सलाम। सलाम जनाब।
तुमने कहा कि तुम्हें बिलियर्ड खेलना नहीं आता।
अलबत्ता आपकी तरह नहीं, इसमें बहुत नया हूं। बिल्कुल मुकाबला नहीं किया जा सकता, बल्कि कहा जा सकता है कि कुछ नहीं आता।
आपको सीख लेना चाहिए इंजीनियर साहब, हमारी संजीदा मीटिंग यहाँ होती है और आम मीटिंग नीचे होती है।
नहीं नहीं, हम बिल्कुल ही बराए नाम मीटिंग नहीं करते। यहाँ की मीटिंग पार्टनर्स और दोस्तों के लिए, नीचे की मीटिंग वर्कर्स के लिए।
वो खबरों वाली वेबसाइट का क्या नाम है, www? वो यहाँ आए थे और तरह तरह के सवाल कर रहे थे, मुलाजमीन की तनख्वाह और ईदी के बारे में।
ठीक है, उन्हें दे दो। मीडिया की खबर बहुत अहम होती है, ये खबर हमें एक ही रात में अरबपति बना सकती है या पूरी तरह से नुकसान पहुँचा सकती है।
अगर ये काम करते हैं तो सुनकर वो दो न्यूज़पेपर वाले भी आ जाएंगे, क्योंकि ये लोग एक दूसरे से मिले होते हैं। फिर हमारा खर्च बढ़ जाएगा और 70-80 लाख तक चला जाएगा।
उनको भी दे दो। जब हम 1 मीटर की फरोख्त पर 1 लाख तक बढ़ा देते हैं, एक ही रात में तामीर की कीमत दोगुनी तक हो जाती है। इसी पैसे की वजह से है ना, जब कोई पॉलिटिशियन या पार्लियामेंट का नुमाइंदा या कोई और इतना अमीर बन जाता है, उसके पास इतना पैसा और दौलत कहाँ से आती है? कितने मुलाजमीन और दफ्तर और तामझाम, नामा निगार, वेबसाइट और न्यूज़पेपर व प्रेस और इस तरह की बहुत सारी चीजों को चलाते हैं। कंजूसी ना करो, दे दो। उनके डायरेक्टरों को एक काबिल कबूल तोहफा मेरी तरफ से 5 लाख का दे दो, अलबत्ता ऐलान छापने के नाम पर। आज दुनिया खबरों और ज़राए इब्लाग की है, लोग अपनी अक्ल इनके हवाले करते हैं और हमें लोगों की अक्ल की जरूरत है, समझे?
जी जनाब।
मैं सोच रहा था कि आप बिल्डिंग में और तामीर और तिजारत वगैरह में नंबर 1 हैं, लेकिन नंबर 1 पॉलिटिशियन भी हैं।
नहीं, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, ये एक बिजनेस है। जब भी किसी पॉलिटिशियन की जरूरत पड़ती है तो उसका सपोर्ट करते हैं।
यानी आपका हुक्म है कि इनको 70-80 लाख ईदी दे दी जाए?
हाँ हाँ, दे दो। क्या तुम मुझे इस अमाउंट से डराना चाहते हो?
अदा कर दूंगा जनाब, माफी चाहता हूँ।
देख रहे हो इंजीनियर साहब, ये समझ गया कि गलती कर रहा है। मीडिया के रोल को वैल्यू देना चाहिए। जाओ, ईद से पहले अदा कर दो, वरना ईद के बाद तो ईदी का मजा जाता रहेगा।
ये मुमकिन है कि ये इस्लामी पॉलिटिशियन प्रॉब्लम खड़ी कर दें।
इस्लामी गैर इस्लामी की बात नहीं है, जिस किसी ने भी मुंह खोला और हमारे फायदे में बात की और हमारे आगे हाथ फैलाया उसे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैं भी एक मुसलमान हूं, लेकिन तुम्हारे अंकल जैसे इनकलाबियों से डरने की जरूरत है, क्योंकि वो बड़े जिद्दी होते हैं। वो लोग कनात भरी जिंदगी पर राजी हैं। ऐसे लोग खतरनाक हैं जिनसे हमें कोई वास्ता नहीं रखना। तुम्हारी क्या राय है?
मेरे ख्याल से मेरे अंकल एक फौजी हैं अपनी तमाम अच्छी इंसानी खसूसियात के साथ।
मैं मानता हूं तुम्हारी बात को, तुम्हारे अंकल भले आदमी हैं, लेकिन तुम्हारे अंकल की अच्छाइयों से टावर और कॉम्प्लेक्स नहीं हासिल किया जा सकता।
जनाब, अगर आप इजाजत दें तो ईद के मौके पर किसी अच्छी जगह जाकर छुट्टी मना लूं।
हमारे यहाँ छुट्टी नहीं है, जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन जब मुझे काम हो तो यहाँ हाजिर हो।
जी जनाब, हमेशा की तरह मैं हार गया, इजाजत दें।
सलामत रहो।
इजाजत दें इंजीनियर साहब। खुदा
हाफिज।
ये तुम्हारे एक हफ्ते का मेहनत आना है, अलबत्ता कतायोन के प्रोजेक्ट के लिए भी पेमेंट कर दी है। बैंक जाने से पहले महमूदी को देकर इसके पीछे स्टैंप लगा लो।
मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं है जनाब।
हम तो गैरों के साथ ऐसा करते हैं, तुम तो अपनों में से हो। इसे रखो और अपना काम अच्छी तरह से करो, और मेरी बात भी काटा मत करो।
जी जनाब, इजाजत दें। सलाम।
सलाम। मैं जा रही हूँ डाट, आपको कोई काम तो नहीं?
फिलहाल तो मैं खुद से ही जीत रहा हूँ, वरना तुम्हारे साथ जरूर चलता।
मेरे डाट को कोई नहीं हरा सकता। तुम जा रहे हो?
जी, अगर आपकी इजाजत हो
तो फिर ठीक है, साथ चलते हैं, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगी।
ले जाने से पहले महमूदी के पास ले जाकर उसके पीछे स्टैंप लगवा लो, उसके बाद जहां कहीं भी जाना है जाओ।
आपके सभी रिश्तेदार शर्मीले हैं डैड।
पहले तो सभी ऐसे ही होते हैं। इनकी फूफी तो याद है ना?
फरीदुन खान, चीटिंग ना करें, मेरे डैड को कोई नहीं हरा सकता।
शरारती कहीं।
आओ चलते हैं, खुदा हाफिज़ डैड।
इजाजत दें।
इसमें सभी बातें लिख दी हैं, चाहो तो पढ़ लो। और गुरजी के बारे में आतिफ सही था। कैप्टन, आप क्यों ये सब?
कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं।
भाई, आपकी इनायत की दरकार है हमें।
बहुत शुक्रिया,
बहुत शुक्रिया।
लीजिए, कोई बात नहीं, आप सलामत रहिए।
गुरजी के सिलसिले में आतिफ का कहना सही है, ना वो बिकाऊ है कि हम लोग उसे खरीद सकें, और ना ही वो डरपोक है कि हम उसे डरा सकें। मैंने उसके तबादले का हुक्म तो दिया, लेकिन सिक्योरिटी ने मुखालफत की।
इस माल का रिलीज होते ही हमें यहाँ से निकलना होगा।
तुम तो इतने डरपोक नहीं थे।
डर की बात नहीं है, इस बोट में तीन ऐसे पार्सल हैं कि जिनके इस्तेमाल की डेट एक्सपायर हो चुकी है।
ये तो एक चीज है
जनाब, ये काम बगैर गुरजी के बहुत ही ज्यादा मुश्किल है।
गुरजी को स्पेशल गार्ड के सभी लोग जानते हैं, अगर ये मसला हल ना किया गया तो हम सब मारे जाएंगे।
चीज क्या? इस मर्तबा जैसे भी हो ये माल रिलीज हो जाना चाहिए। पेपर्स भी हातिफ के ही पास है, हम भी उसमें लगे इन्वेस्टमेंट से पीछे नहीं हट सकते। ये काम खत्म होते ही हम सभी लोग वापस चले जाएंगे तेहरान। ये बस आखिरी है। हाँ हाँ, ये आखिरी है बस हातिफ भाई।
उस मर्तबा भी यही कहा था कि बस ये आखिरी है।
इतनी सख्ती ना करो ना भाई, तुम इस डिपार्टमेंट के हेड हो। गुरजी को भी आजकल में सर्दी जुकाम हो जाएगा, वो चला जाएगा।
तो फिर सामान तभी उतारा जाएगा जब वहाँ गुरजी मौजूद ना हो।
ठीक है, लेकिन अब मेरी शर्त यह है कि हिचकिचाना नहीं। मामूली सा 30 तो कंटेनर भाई हातिफ, बस अगर इन्हें निकाल लिया तो हम चारों की जिंदगी समझ लो कि हमेशा के लिए सिक्योर हो जाएगी।
और वो आदमी भी इन्हीं दिनों में सर्दी जुकाम की वजह से यहाँ से दफा हो जाएगा, फिर किस बात का डर है?
प्रोग्राम बन रहा है, बर्फबारी होते ही ठंड हो जाएगी, ठंड लगेगी और काम तमाम।
अलबत्ता इदारे मौसमियात के मुताबिक एक दो दिन में बर्फबारी होगी।
भाई जब तक तुम मजाक कर रहे बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन जब संजीदगी से कहते हो तो मैं सचमुच डरने लगता
हूँ। आतिश मैं सही बोल रहा हूँ, इदारे मौसमियात ने कहा है, खबरें सुन लो।
मैं साथ नहीं दूंगा।
अब अच्छे बच्चे की तरह डरना छोड़ दो, हम कोई फालतू लोग तो है नहीं, तुम्हारा ख्याल रखेंगे दोस्त।
जाओ खबरें सुन लो, समझ में आ जाएगा।
دارم حس میکنم نورو که همزاد